शुभ प्रभातम प्यारे विद्यार्थी मित्रों, आशा करता हूँ आप कुशल होंगे। इससे पूर्व हम कृतिका का तीसरा पाठ साना साना हाथ जोड़ी, यह पाठ को पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था कि लेखिका पूर्वोत्तर के राज्य सिक्किम घूमने गई है, वहां का मनोहारी दृश्य देखकर बहुत ही आनंदित और भाव विभोर हो जाती हैं, और वो सुबह सुबह बालकनी में आकर उस सिक्किम की राजधानी गंगटोक जहां पर वो रुकी हुई थी, वहां का मनोहारी दृश्य देखकर प्रफुल्लित हो जाती हैं। क्योंकि वो पिछले वर्ष भी हिमालय को देखने के लिए इस शहर में पधारी थी और हिमालय को देखने के प्रयास किया होगा, लेकिन किन्हीं कारणों से शायद वह हिमालय को पास से देख न पाई हो, इसलिए वह पुनः गंगटोक शहर पधारी और हिमालय को देखने की इच्छा जाहिर की। सुबह सुबह उठने के बाद, चूंकि मौसम साफ था इसलिए गंगटोक में वो जहां पर रुकी हुई थी वहां से हिमालय जो युमथांग में है वहां से 149 किलोमीटर दूर है, वहां से हिमालय की चोटियां साफ दिखाई देती हैं यदि मौसम साफ हो। क्योंकि मौसम उस दिन भी धुंधला था, इस वजह से लेखिका को हिमालय का वह दृश्य गंगटोक में जहां पर रुकी हुई वहां से साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वह युमथांग जाने के लिए सुबह सुबह अपने गाइड कम ड्राइवर से को साथ लेकर निकल पड़ती हैं युमथांग के लिए। रास्ते में चलते चलते वो बहुत ही मनोहरी दृश्य देखती हैं, जिनको देखकर वो बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं, और एक जगह पर वो बौद्ध मठ पर पधारती हैं, जहां पर वो देखती हैं ये बहुत सारी बौद्ध पताकाएं फहरी हुई हैं। नारगे उन पताकाओं की विशेषताओं के बारे में बताते हैं, और ऐसे बताते हुए वहां से फिर लेखिका आगे को बढ़ जाती हैं, अपनी यात्रा के अगले पड़ाव के लिए चल देती हैं। अब देखिए, जब लेखिका वहां के लिए जा रही हैं, तब हिमालय उनको किस किस तरह दिखाई देता है इसके बारे में, जब जैसे जैसे वो हिमालय के पास पास पहुंच रही हैं, उस क्षण हिमालय का चित्र उनके आंखों के सामने किस भांति परिवर्तित हो रहा है इसके बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं। हिमालय पर बढ़ते जाने से बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूट रही थी। अब स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और कार्टन ढोते बौने नेपाली बहादुर ओझल हो रहे थे। जैसे जैसे वो ऊंचाई पर जा रही थी तो जितने भी कस्बे थे, बाजार थे, बस्तियां थी, वो सब पीछे छुट्टी जा रही थी, और स्वेटर बुनने वाली जो नेपाली युवतियां हैं और कार्टन ढोते जो नेपाली जो छोटे छोटे कद के जो बौने नेपाली बहादुर, वो भी उनकी आंखों से ओझल होते जा रहे थे। घर छोटे दिखाई देने लगे थे। जैसे जैसे आगे बढ़ी थी हिमालय की तरफ, जितने भी घर थे वो छोटे छोटे दिखाई देने लगे, क्योंकि हिमालय की ऊंचाई वहां से काफी थी। तो जब नीचे देखती थी लेखिका तो वहां से घर बहुत ही छोटे दिखाई दे रहे थे, पर हिमालय अपने विराट रूप में सामने आने वाला था। जब हिमालय की चूंकि पास पहुंच रही थी तो बाकी जो बस्तियां थी, सारी चीजें थी, दुकानें थी, सब छूटी जा रही थी, सब छोटे छोटे दिखाई देने लगे थे, और अब हिमालय उनके सामने विराट रूप धारण किए हुए उनकी आंखों के सामने छाता जा रहा था। वही हिमालय जो पल पल अपना रूप बदलता रहता था, अब रास्ते वीरान सुनसान सकरे और घुमावदार होते जा रहे थे। बहुत ही खतरनाक तरीके से रास्ते थे कि उसमें थोड़ी सी चूक हुई कि आपका जीवन लीला समाप्त। इतने सकरे और घुमावदार रास्ते, बहुत ही खतरनाक जगहों पर उनकी गाड़ी आगे बढ़ रही थी, और हिमालय अपना विशाल रूप धारण करता जा रहा था। पल दर पल घटाएं पाताल को छू रही थी। और जब लेखिका ऊपर से देख रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे घाटियां जो हैं वो पाताल को छू रही हैं, फूल किसी जादू की भांति मुस्कुरा रहे थे। जो रास्तों पर जिनको फूल मिल रहे थे, ऐसा लग रहा है किसी जादू की भांति वापस में हमसे मुस्कुरा रहे हैं। इनके बीच से गुजरना किसी गुफा से गुजरने जैसा था। इस दृश्य ने मन पर ऐसा असर डाला कि मन गा उठा, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। इसके पश्चात जब लेखिका हिमालय के पास पहुंची तो प्राकृतिक सौंदर्य में डूबी लेखिका क्या कहती हैं, किसी ऋषि की तरह शांत लेखिका सारे परिदृश्य को, जो भी रास्ते में जो भी उनको दृश्य दिखाई दे रहे थे, जो भी उनको सीन्स दिखाई दे रहे थे, जैसे किसी शांत ऋषि जो होते हैं ध्यान मग्न होकर आत्म तत्व का चिंतन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से लेखिका भी शांत मन होकर उस परिदृश्य को एक आत्म तत्व ज्ञानी ऋषि की भांति अपने अंदर समेट लेना चाहती थी। वो आसमान छूते हुए पर्वत शिखर, दूध की धार जैसे गिरते जल प्रपात, नीचे झुट इठलाकर बहती तीस्ता नदी को देखकर वह अभिभूत होती। इतना सुंदर दृश्य को देखकर वो अपने अंदर का जो खुशी है, प्रसन्नता है, वो उजागर कर दिया। लेखिका ने इतनी सुंदर नदी पहली बार देखी थी। वह नगपति विशाल को सलामी देना चाह रही थी। नगपति अर्थात हिमालय की खूब ऊंचाई से गिर रहे सेवन सिस्टर्स फॉल नामक झरने के सौंदर्य ने उनका मन इस तरह बांधा कि सभी सैलानी इस खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करने में व्यस्त थे। कि सेवन सिस्टर्स फॉल है वो इस तरह कितना सुंदर था कि वहां जितने भी सैलानी गए हुए थे, जितने भी यात्री गए हुए थे, जितने भी पर्यटक गए हुए थे, वो सारे के सारे पर्यटक उस सीन को अपने कैमरे में कैद करने में व्यस्त थे। लेखिका आदिम युग की राजकुमारी सी अभिशप्त पत्थरों पर बैठकर बहती जलधारा में पैर डुबोए भीतर तक भीग रही थी। लेखिका क्या कर रही थी, जैसे आदिम युग की राजकुमारी है, ऐसे अपने आप को, अपने मन और चित्त को इस तरह से कर लिया था जैसे वो आज की राजकुमारी अभिशप्त पत्थरों पर बैठकर बहती जलधारा में पैर डुबोए भीतर तक भीग रही थी। सिर्फ उसके पैर ही नहीं भीग रहे थे, इतनी आनंदित थी कि उसकी अंतरात्मा तक उस शीतल ठंडे जल से उसकी अंतरात्मा तक गीली हो रही थी। वह अभी यूं ही बैठी रहना चाहती थी कि जितेन आगे चलने के लिए आग्रह करने लगा। जैसे ही वो तीस्ता नदी पर पैर डुबोकर बैठी हुई थी, सेवन सिस्टर्स फॉल पर, सॉरी सेवन सिस्टर फॉल्स जहां फॉल जहां पर गिर रहा था, जहां पर वो जलप्रपात गिर रहा था, वहां पर लेखिका उस ठंडे जल पर अपने पैर डुबोए आंतरिक सुख की अनुभूति कर रही थी। तभी उनका ड्राइवर या कह लें गाइड जितेन नारगे आकर लेखिका से आगे चलने के लिए आग्रह करने लगा। रास्ते में फिर वही आत्मा और आंखों को सुख देने वाले नजारे पर अचानक किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी। लेखिका इन सारे दृश्य परिदृश्य में से खो चुकी थी कि इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि रास्ता सफर उसका कैसा चल रहा है, क्या है। वो इतना इस माहौल में, इस परिदृश्य में इतना अंदर तक समा चुकी थी कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसकी गाड़ी भी चल रही है या कुछ हो भी रहा है। वो बस इसी प्राकृतिक सौंदर्य पर खोई हुई थी। लेकिन अचानक किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो और सब कुछ बादलों की एक मोटी सुख देने वाले अचानक किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो और सब कुछ बादलों की एक मोटी चादर में ओझल। लेखिका माया और छाया के इस अनूठे खेल को अपनी आंखों में भरती जा रही थी। जो माया, जो प्रकृति की जो माया है और जो छाया है, उसको अपनी आंखों में भरती जा रही थी। थोड़ी देर बाद धुंध छटने लगी। जब दिन हुआ 11-12 बजे जब बज जाता है तो जो बादलों में धुंध होती है, जो कोहरा होता है, वो धुंध छटने लगी। उसने अपने चारों ओर जन्नत बिखेरी देती। जब धुंध छटने पर उसने अपने चारों जन्नत बिखरी देखी, जहां तक निगाह जाती थी खूबसूरती ही खूबसूरती नजर आती थी, और नजर आता था कहीं कहीं लिखा हुआ थिंक ग्रीन। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे धीरे धीरे बहती तीस्ता नदी, मडराते बादल, लहराते प्रियुता और रूडोडेंड्रो के फूलों के सतत प्रवाह में लेखिका को अपना वजूद बहता हुआ लगता है। उसके होंठों पर फिर वही सवेरे वाली प्रार्थना गूंजने लगी। कौन सी प्रार्थना? साना साना हाथ जोड़ी। रास्ते में आगे चलकर लेखिका देखती है पहाड़ के अद्वितीय सौंदर्य के बीच पहाड़ी औरतों को पहाड़ पर बैठकर पत्थर तोड़ते हुए देखना उसको नागवार गुजरता है, उसको अच्छा नहीं लगता। उनकी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े तथा कईयों की पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे भी थे। ऐसे स्वर्गीय सौंदर्य के बीच मौत, भूख और जिंदा रहने की जंग। लेखिका को पता चला कि ये औरतें इन सड़कों को चौड़ा बना रही हैं। जिस पर काम करते कभी जान भी चली जाती है, जरा सी चूक होते ही सीधे पाताल प्रवेश हो जाता है। लेखिका को याद आया इस सीन्स को देखकर, याद आया कि एक बार उसने पलाम और गुमला के जंगलों में पीठ पर कपड़े से बंधे बच्चों को कपड़े से बच्चे बांधे पत्तों की तलाश में फिरती आदिवासी स्त्रियों को देखा था, जिनके पैर फूल गए थे। वो इतने चलते घूमती रहती थी स्त्रियां कि अपने बच्चों को पीठ में बांध लेती थी गुमला की पहाड़ियों में, गुमला के जंगलों में, पलामू और गुमला के जंगलों में, कि उनके पैर तक स्वेलिंग आ गई थी, उनके पैरों में सूजन आ गई थी, उनके पैर तक फूल गए थे। उसने महसूस किया कि हर जगह की कहानी एक ही जैसी है। कहीं पर भी, चाहे स्वर्ग जैसा सुंदर जगह हो या हमारे जैसे मैदानी क्षेत्रों, हर जगह की एक ही जैसी स्थिति है। हर जगह की कहानी एक सी है। जितेंद्र ने कहा कि मैडम, यह देश की आम जनता है। तो लेखिका ने कहा, यह आम जनता होने के साथ साथ जीवन का संतुलन भी है, जो कितना कम लेकर समाज को कितना कुछ देती है। तभी लेखिका ने श्रम सुंदरियों की खिलखिलाहट सुनी। नारगी कह रहा था जब कि ये मैडम यह देश की आम जनता है, इस पर लेखिका ने रोष व्यक्त किया और फिर इसके बाद कहती है कि ये आम जनता ही है जो समाज का संतुलन बनाए रखती है, वरना यदि सब इस समाज से लेने के लिए आतुर हो जाए तो समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा। ये जनता है जो बहुत कम, अपने काम के बदले हमसे बहुत कम लेती है और बहुत सारा काम करके हमें देती है, जिससे हमारे समाज का संतुलन बना हुआ है। ये सब ऐसी चर्चा कर रही थी, कभी उन सम सुंदरियों की एक खिलखिलाहट, हंसी की आवाज सुनी, जिससे लेखिका बहुत प्रसन्न हो गई। आगे जाकर लेखिका देखती हैं कि लगातार ऊंचाई चढ़ते हुए एक स्थान पर लेखिका ने देखा कि ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौटते हुए उनसे लिफ्ट मांग रहे थे, जो 3-4 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ते हुए स्कूल जाते हैं। बच्चे वहां पर इतना आसान नहीं है जितना हम मैदानी क्षेत्र में स्कूल, जगह जगह पर स्कूल मिल जाते हैं, वहां पर इतना आसान नहीं है शिक्षा। वहां पर बहुत शिक्षा बहुत कठिन है, बच्चों को बहुत मुश्किल भरे रास्तों से जाना पड़ता है और बहुत मुश्किल से अपने पढ़ाई करनी पड़ती है। इतना आसान नहीं है वहां पर शिक्षा प्राप्त करना। जितेंद्र बता रहा था कि ये बच्चे तराई में बने एक मात्र स्कूल में जाते हैं, वहां पर एकमात्र वही स्कूल है, और लौटते समय अपनी माताओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, जानवरों को चराते हैं, जहां पर उनकी माँ अपने जानवरों को चरा रही हो तो दूध देने वाले जानवरों को चराती है, वहीं पर वापस जब लौटते हैं तो अपने माताओं के साथ, अपने माओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं और लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य। लेखिका जब चलते चलते रात हो जाती, शाम होने लगती है, तो शाम का प्राकृतिक सौंदर्य उनको दिखाई पड़ता है। आगे जाने पर रास्ता और भी सकरा और खतरनाक होता जा रहा था। जिन पर जगह जगह चेतावनियां लिखी थी, इसी रास्ते पर उसने घने घने बालों वाला याक को देखा। याक जंगली गाय जो दूध देता था। अब तक सूरज ढलने लगा था, पहाड़ी औरतें गाय चराकर घर लौट रही थी, चाय के हरे भरे बागानों में युवतियां चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। बोकू पहने इन युवतियों का यौवन नदी की भांति उफान ले रहा था और चेहरा सम से दमक रहा था, ग्लो आ रहा था उनके चेहरे पर। इधर हरियाली पर सूरज डूबते सूरज की स्वर्णिम आभा सतरंगा सौंदर्य रच रही थी। गगनचुंबी पहाड़ों की तली में लायुंग नगी सांस लेती दिख रही थी। बच्चों, आज हम इस पाठ को यहीं पर खत्म करते हैं। आगे हम अगले मॉड्यूल में पढ़ेंगे। धन्यवाद।